हरे कृष्ण
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
Oh,
भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की इताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद दसवें अध्याय का 34वां श्लोक आज हम ले रहे हैं। अतः परम सूक्ष्मतम अव्यक्तम निविशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वाक मनसः परम। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तम निविशेषणम् अनादि मध्य निधनम् नित्यम वाक मनसः परम्। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तम निर्विशेषणम् अनादि मध्य निधनम् नित्यं वागमन परम्। अतः परम अव्यक्तम निर्विशेषणम् अनादि मध्य निधनम् नित्यं वागमन सह परम्। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तम निर्विशेषणम् अनादि मध्य निधनम् नित्यं वागमन सह परम्। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तम निर्विशेषणम् अनादि मध्य निधनम् नित्यं वागमन सह परम्। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तम निर्विशेषणम् अनादि मध्य निधनम् नित्यं वागमन सह परम्। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तम निर्विशेषणम् अनादि मध्य निधनम् नित्यं वागमन सह परम्। माता हरे कृष्ण का अनुवाद श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। अतः इससे परे दिव्य संसार है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, ना तो इसका आदि है ना मध्य और ना अंत। अतः ये व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तात्पर्य भाई डिवाइन में श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की, परमेश्वर का स्थूल ब्रह्म रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है। अतः यह रूप शाश्वत रूप नहीं है जिसका ना तो आदि है ना मध्य और ना कोई अंत। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वह भौतिक कहलाती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ, अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते हैं। भौतिक जगत का आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है, इससे सूक्ष्म मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होते हैं, किंतु आठों ब्रह्म आवरणों को परम सत्य के ब्रह्म आवरण के रूप में बताया जाता है। अतः परम सत्य भौतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे है, निश्चित ही सभी भौतिक चिंतन से परे है। ये निर्विशेषणम कहलाता है, किंतु निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विशेषणम का अर्थ है गुण, अतः निर के जुड़ने से निर्विशेषणम का अर्थ भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जाता है। इस निषेधात्मक पद में चार दिव्य गुण है, अप्रकट, दिव्य, शाश्वत तथा मन एवं वाणी से परे। शब्दों की सीमाओं से परे का अर्थ है भौतिक बोध का निषेध। जब तक मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त नहीं होता वे भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाज्ञेयं ददाति स्वप्नकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदं श्रीरूपं श्रीरूपं सर्वजातं सर्वरघुनाथान्वितम् सावधूतं परिजन सहितं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका भक्त राधा कांत नमस्ते। तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा जगह खराब होने के कारण माफी चाहूंगा। तो जितना इसमें समझ पाए उसे बताने का प्रयास करेंगे, बाकी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसमें भगवान के गुणों को विशेष विशेषणम बताया गया है, यानी कि भगवान जो है वो बिल्कुल विशेष है। विशेष मतलब होता है कुछ परफेक्ट चीज, इसलिए भगवान जो है वो परफेक्ट है, कंप्लीट है। लेकिन कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, तो बोलते हैं कि आपके वेदों में साहित्यों में शास्त्रों में लिखा है कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है। लेकिन हमें इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि निर्गुण, निर्विशेष, निराकार का क्या अर्थ है। अगर कोई भौतिकवादी दृष्टि से निराकार बोलता है तो हम उसको बता सकते हैं कि निराकार का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, है ना। बोलते भगवान का कोई आकार नहीं है, तो अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो अगर किसी चीज़ का आकार नहीं है इसका मतलब वो इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है। तो हम किसी भी व्यक्ति को सिंपल सा बता सकते हैं कि भगवान को पूर्ण विशेषणम तब कहा जाता है जब भगवान कंप्लीट है। जैसे बोलते हैं ना रेमंड स्कैड आता है, बोलते हैं कंप्लीट मैन है, जो व्यक्ति रेमंड पहनेगा वो व्यक्ति कंप्लीट मैन है। तो कंप्लीट मैन मतलब मैन होकर जो रेमंड पहनता है वो कंप्लीट है, तब वो परफेक्ट मैन है। विशेषणम मतलब परफेक्ट, कृष्णा इज विशेषणम परफेक्ट। और वो कंप्लीट कब कहलाते हैं, जब उनके अंदर सारे के सारे गुण मौजूद हो, मतलब उनका कोई आकार भी हो। निर लगने का मतलब उनके अंदर वो चीज अवेलेबल नहीं है, वो चीज वहां पर है ही नहीं, निराकार। भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान इनकम्प्लीट है। अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो फिर भगवान कैसे हुए। लोग बोलते हैं ना भगवान तो निराकार है, फिर वो पूर्ण कैसे हुआ, क्योंकि वो तो निर हो गया, किसी चीज में कमी हो गई। जब वो पूर्ण होगा तो उसके अंदर उसमें आकार भी है, उसमें सब कुछ है, है ना। और दूसरा समझने का ये है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, है ना। भौतिक आकार का मतलब भगवान की ये इस प्रकार के पंच तत्व का शरीर नहीं है। भगवान की आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। कहते हैं जब हम ये शरीर छोड़कर दिव्य रूप धारण करते हैं, अगर हमने पूरे जीवन में भक्ति करी तो हमें दिव्य रूप प्राप्त होता है। तो दिव्य रूप क्या होता है कि ये पंच तत्वों का नहीं होता, वो शरीर और आत्मा एक जैसे होते। जैसे बोलते हैं नैनम छंदति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ना तो आत्मा को कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना भिगो सकता है। उसी प्रकार से उस शरीर को भी ना कोई काट सकता है, ना भिगो सकता है। इसलिए बोलते हैं वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे का शरीर होता है, दिव्य शरीर। ऐसे ही भगवान का शरीर जो है वो भी पूर्ण रूप से दिव्य है, आत्मा में और शरीर में कोई भेद नहीं है ना। तो हम ये लोगों को बोल सकते हैं कि भगवान में सारे के सारे गुण हैं लेकिन भौतिक गुण नहीं है ना। जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स्कूल होते हैं ना, स्कूलों के अंदर जो गांव के स्कूल होते हैं, प्रभु जी जानते होंगे, एनसीडी स्कूलों में जब जाते हैं गांव के इलाकों में, तो उन स्कूलों के अंदर क्या करते हैं, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो हारमोनियम सिखाने के लिए एक छोटी सी पट्टी ले लेते हैं, एक छोटी सी लकड़ी का फुट्टा, और उस पर सरगम लिख लेते हैं, सारे गामा, और बच्चों से बोलते हैं प्रयास करो। तो म्यूजिक क्लास में टीचर आती कहती है मुंह से आवाज निकालो, सा रे गा, और ऐसे निकालते हैं। लेकिन उसमें कई बार कई बच्चे उल्टा फुल्टा आवाज भी निकालते हैं, पी पी ऐसे निकालते हैं, लेकिन क्योंकि वो परफेक्ट हारमोनियम नहीं है। लेकिन जो असली हारमोनियम की सरगम है उसे मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है, जब बजाएंगे तो सरगम बजेगी सारे ना, बहुत सुंदर सरगम। तो वो जो पट्टी से आवाज निकल रही है और वो जो हारमोनियम से निकल रही है, उन दोनों आवाजों में बहुत भेद है। इसी प्रकार से जो इस भौतिक संसार के जो गुण है वो वही है जैसे पट्टी से आवाज निकल रही है, और जो भगवान के साथ जो गुण है वो हारमोनियम की आवाज है, वो रसीले है, और उन्हें हम प्राप्त करते हैं कब, जब हम भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करते हैं, तब वो आनंद हमको प्राप्त होता है। अदरवाइज तो भौतिक गुण देखें तो भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, इसलिए शास्त्र में कहा गया भगवान निर्गुण है, उनमें भौतिक गुण नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक गुण तो उनके अंदर 64 गुण पूर्ण रूप से परे हुए हैं, तभी तो पूर्ण होने के कारण वो भगवान कहलाते हैं, है ना। पूर्ण विदम बोला जाता है भगवान को, कि भगवान पूर्ण है, तभी वो पूर्ण बनते हैं क्योंकि उनके अंदर सारी चीजें पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और इसके अंदर बताया गया है भावार्थ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त नहीं होता वो भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता। तो इसके कारण हम भौतिक दृष्टि से भगवान को निर्गुण निराकार मानते हैं, क्योंकि हम जो है भौतिक गुणों से भरे हुए हैं। तो हम देखते हैं भगवान के अंदर भी भौतिक गुण नहीं है, इसका मतलब भगवान निर्गुण है। भगवान के अंदर हमारे जैसी कोई विशेषता नहीं है, इसलिए भगवान निर्विशेष है। भगवान के अंदर कोई हमारे ऐसा आकार नजर नहीं आ रहा, इसलिए भगवान निराकार है। जबकि भगवान के अंदर भौतिक चीजें है ही नहीं, इसलिए भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, क्योंकि उनके अंदर सारी चीजें आध्यात्मिक है। तो अगर हमें भगवान की वो निर्गुण निर्विशेष निराकार चीज को छोड़कर पूर्ण रूप का अगर दर्शन करना है तो हमको भी कैसा बनना पड़ेगा, बिल्कुल आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल में बताते हैं कि पंच तत्वों के ऐसा नहीं है कि सूर्य के अंदर कोई जीवन नहीं है, जल के अंदर कोई जीवन नहीं है। सूर्य लोग जो है बताते हैं उसमें बहुत गर्मी है, साइंटिस्ट बताते हैं वहां पर एटम फटते रहते हैं और उसके अंदर इतनी गर्मी होती है कि सूर्य के पास जाने से भी व्यक्ति जल जाता है। तो आज तक किसी साइंटिस्ट का कोई रॉकेट सूर्य तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जो भी रॉकेट लेके जाते हैं उसकी कई मील दूरी से ही वो जल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि सूर्य लोक में भी जीवन है। वहां पर कैसा जीवन होता है, जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व है, कौन कौन से, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, इसी से तो भगवान बनता है, भ ग वा आन, है ना, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, क से अग्नि, न से नील। तो ये भगवान के पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, इसके अंदर जब अग्नि का तत्व बढ़ जाता है, फायर एलिमेंट जब ज्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति आसानी से उस सूर्य लोक में रह सकता है। जब उसके अंदर जल तत्व, नील का तत्व बढ़ जाता है, तो वो आसानी से जल के भीतर रह सकता है। मछली कैसे जल के भीतर रह सकती है, हम नहीं रह सकते, तो हम यहीं पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे जल के नीचे भी जीवन है, डिस्कवरी चैनल देखें तो आपको पता चलेगा कितने प्रकार के जीव जंतु जल के नीचे रहते हैं, हम जानते भी नहीं है। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और 80 लाख प्रकार के तो जीव जंतु ही हैं, और जल के नीचे ही रहते हैं। तो कितने प्रकार के जीव जंतु जल के नीचे, वो क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उनका वाटर एलिमेंट जो पानी का तत्व है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे सूर्य का तत्व जो है जब ज्यादा हो जाएगा, अग्नि तत्व, तो हम सूर्य के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, और जब हमारा भूमि तत्व ज्यादा होता है तो फिर हम इस पृथ्वी पर रह पाते हैं। जब हमारा आकाश तत्व ज्यादा हो जाएगा तो हम चिड़ियों की तरह उड़ पाएंगे। क्यों उड़ पाती है चिड़िया, क्योंकि उसके अंदर जो आकाश वायु का तत्व है वो बहुत ज्यादा लेवल पे है, और इसीलिए वो आसानी से उड़ सकती है। तो इसी प्रकार से जीवों के अंदर अलग अलग तत्वों की परसेंटेज है, लेकिन ये पंच तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों को मिलाकर एक आत्मा के ऊपर एक आवरण बना दिया जाता है। लेकिन जब आत्मा कब जा पाएगी आध्यात्मिक लोक में, जब इन 8 आवरणों से परे होकर हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बना लेंगे, जब स्पिरिचुअल एलिमेंट हमारे जीवन में आध्यात्मिक तत्व की प्रगति होगी, तभी हम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर सकते हैं, तभी हम आध्यात्मिक जीवन का दर्शन कर सकते हैं, तभी हम इस शरीर में रहते हुए भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल में बता रहे हैं इसी पर्पट के अंदर कि ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी जो होती है, आध्यात्मिक गुण जिनसे हम भगवान को देख सकते हैं, उसको हमें गेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं लेक्चर में या डिस्कशन में बोलते हैं वैष्णववाद कि प्रभु जी आध्यात्मिक गुण हमें अपने जीवन में अर्जित करने हैं, है ना, जबकि प्रभुपाद मना कर रहे हैं कि एक्वायर नहीं करने हैं। अर्जित मतलब एक्वायरिंग, यू डोंट नीड टू हैव टू एक्वायर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, रिवाइव, उसको वापस जागृत करना है। ऑलरेडी जब हम भगवान के अंश हैं, भगवान कह रहे हैं कि माम एव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, सारे के सारे जो लोक में जीव हैं वो मेरे अंश हैं। तो भगवान अगर आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है तो हम भी आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक गुण प्रकट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम जब इस संसार में आते हैं तो हम भौतिक आवरणों से घिर जाते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं कि जब बारिश की बूंद ऊपर से गिरती है तो प्योर होती है, लेकिन जब मिट्टी में मिलती है तो वो मैली हो जाती है, मड़ी हो जाती है। ऐसे ही हम जब ऊपर से नीचे गिरे तो हमारे आध्यात्मिक गुण खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए, छुप गए, और उसके ऊपर भौतिक आवरणों ने उसको घेर लिया, है ना। इसीलिए एक श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण से, जितना हम सिंसियरिटी से सुनते जाएंगे हमारे हृदय में एक दिन कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, जो कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे जीवन में है, लेकिन हमें उसको क्या करना है, जागृत करना है। रिवाइविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको अर्जित नहीं करना है, कुछ बाहर से नहीं लेना है, अंदर जो चीज है वही है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति इंजीनियर है, रात को जब वो सोता है तो वो इंजीनियर ही होता है, और जब वो सुबह सोकर उठता है तभी वो इंजीनियर होता है। लेकिन उन रात के 6 घंटों में वो कभी राजा बनता है, कभी वो जंगल में सांप से द्वारा काटा जाता है, कभी वो भ्रमण पर निकल जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, लेकिन जब वो सोकर उठता है तो वो वापस इंजीनियर होता है। इसी प्रकार से जब हमारी आत्मा इस सृष्टि में आती है तो आध्यात्मिक होती है, उसके ऊपर जो क्वालिटीज होती है वो आध्यात्मिक होती है, गुण होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, हम पूरे आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं, 6 घंटे की नींद है वो, इसमें थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की नींद होती है, तो क्या बोला जाता है कि व्यक्ति सोचता है मैं जो हूँ ये सो एंड सो नाम से जाना जाता हूँ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ। ये सारी आध्यात्मिक गुणों को हम भूल जाते हैं और भौतिक गुणों को। अब इसमें क्या जरूरत है, किसी को जगाने की जरूरत है सोते हुए को कि हरि बोल प्रभु प्रभु उठो, 4 बज गए मंगल आरती का टाइम हो गया, ऐसे उठाने की जरूरत है। ऐसे ही जो व्यक्ति सो रहा है उसको उठाने के लिए वैष्णवों की जरूरत है, उठाएं और बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उठो, क्या हुआ, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वरना क्या है कि हम इस भौतिक संसार में आकर भौतिक चीजों के अंदर इतने ज्यादा आनंद प्राप्त करने लग जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, है ना। भला हो वैष्णवों का जो कि हमारे जीवन में आते हैं और हमको बार बार उठाते हैं, हरि बोल उठो प्रभु उठो, जीव जागो गौरा चांदेर बोले, जीव जाग जाओ उठो, बहुत समय निकल गया आपने अपने भौतिक जीवन में काट दिया, अब उठो और आध्यात्मिक वापस अपनी रिवाइविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ चलो। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके जीवन में है उसको दोबारा से जागृत करने का प्रयास करो। ऐसे कर वैष्णववाद हमको बोलते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर सो रहा हो, सर्दी के समय में हम देखते हैं दिसंबर में कि जानबूझकर 4 बजे अलार्म क्लॉक ने नींद खोल दी और फिर हम दोबारा से रजाई ओढ़कर सो जाते हैं, अभी वो सो नहीं रहा है, जागा हुआ है लेकिन लेटा हुआ है, अब उसे बोले हरि बोल करते रहेंगे, उठेंगे नहीं। तो व्यक्ति जानबूझकर जो सोया हुआ है इस भौतिक संसार में, देखिए आप भी भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो क्लास में आते हैं, बाकी लोग जो इधर उधर इंद्रिय तृप्ति में बिजी हैं वो लोग कौन है, जागने के बाद भी सोए हुए हैं। इतना हरिनाम इतना प्रचार होता है फरीदाबाद में, फिर भी लोग नहीं आते हैं भागवत क्लास के लिए, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो सब जागने के बाद भी सोए हुए हैं, है ना। तो हमें अपनी स्थिति को बदलना है। एक बार 2 मित्र थे, प्रभुपाद एग्जाम्पल देके बताते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक मित्र ने बोला दूसरे से कि मैं ना गन्ने का रस पीना चाहता हूँ, गन्ना सुना है बहुत रसीला होता है, गर्मियों में गन्ना बहुत चलता है, अभी मायापुर गए थे तो वहाँ पर सिर्फ गन्ना ही गन्ना का जूस होता है, गन्ने का जूस पीना चाहता हूँ, तो कैसा होता है, मैंने कभी गन्ना देखा नहीं, वो शहर से आया था। तो उसने बोला गन्ना ऐसा होता है एक बांस के जैसा होता है, लंबा होता है, खेतों में खड़ा होता है, उसे छीलो ऐसे, फिर छील छील के खाओ दबा के, तो बहुत रस निकलता है उसमें से। अच्छा, तो वो चला जाता है और ढूंढता रहता है कि खेत मिल जाए जहाँ पर लकड़ियाँ खड़ी हो लंबी लंबी, तो जाता है, एक बांस होता है ना, बैम्बू, बांस का एक खेत होता है, वहां जाकर देखता है इतने लंबे लंबे बांस खड़े हुए हैं, तो निकालता है एक बांस और कहता है यही गन्ना होगा, और उसे खाने का प्रयास करता है, चूसता रहता है पूरा, उसमें से कोई रस नहीं निकलता। फिर अपने दोस्त को आकर बोलता है कि अरे तूने मुझे पागल बना दिया, बोला कि उसमें रस निकलेगा, गन्ने में से कोई रस नहीं होता, सबसे गंदी वस्तु जो मैंने आज तक खाई वो ये गन्ना है। तो उसने कहा क्या खाया तुमने, तो उन्होंने दिखाया कि ये खाया, बोले अरे ये गन्ना नहीं होता है, गन्ना तो ये होता है। तब उन्होंने असली गन्ना जब छील के दिया तब उन्होंने खाया, बोले आ हा 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 क्या रस निकल रहा है इसके अंदर, है ना। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैटेरियलिस्टिक तरीकों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कभी हम फिल्म देखते हैं, शायद 3 घंटे सिनेमा देखेंगे तो हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा, या फिर हम जो है शराब पिएंगे तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। अभी कल परसों में होली थी तो लोग जो है वहाँ पर बियर की दुकानों पर भीड़ हो जाती है एक दिन पहले से, लोग सोचते हैं इससे आनंद प्राप्त हो जाएगा, या फिर प्रजल्पा करेंगे, गप्पे मारेंगे तो उससे आनंद प्राप्त हो जाएगा, या फिर बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे तो उससे आनंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ज्यादा बताते हैं खीर एक व्यक्ति को खिला दी, प्रभुपाद एग्जांपल में बता रहे थे कि उसे खीर बहुत पसंद थी, तो उन्होंने 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरी 4 कटोरी के बाद बोले नहीं नहीं प्रभु जी अब नहीं खाया जाए, और खाओ। तो उन्होंने फिर भी खा ली प्रेमवश, फिर 6-7 कटोरी खाने के बाद क्या हुआ, लूज मोशन हो गए उनको, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो चीज जो आपको अच्छी लग रही है वो भी आखिरकार हानिकारक ही है इस भौतिक संसार में। सिर्फ एक ही चीज है जो कि फायदेमंद है, वो क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। उसको प्राप्त करेंगे तो असली गन्ने का रस मिलेगा, वरना छीलते रहो खड़े हुए अपने कितने बांस के खेतों में जाकर। और यही संसार में है ना, परिवार को प्रसन्न करना चाहते हैं, फैमिली के लोग सेटिस्फाई करना चाहते हैं, लोगों को बोले प्रभु जी आप टेंपल नहीं आते, बोले प्रभु जी फैमिली है ना उसका ख्याल रखना पड़ता है, क्या करें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, बांस का खेत है। आप सोचिए कि वो कृष्ण जिन्होंने आपको 24 घंटे दिए हैं, अभी अगर किसी के हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो 1 घंटे की ऑक्सीजन, एक हमारे फ्रेंड है उनकी मदर 22 दिन से हॉस्पिटलाइज है, डेली वेंटिलेटर पर है वो, और उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है 80,000 रुपये। शिष्य राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण भगवान। तो उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिया जा रहा है 1,00,000 रुपए ऑक्सीजन पर घंटा, सोचिए 80,000 रुपए पर घंटा का ऑक्सीजन जा रहा है उनको वेंटिलेटर पे, और 22 दिन से वो है हॉस्पिटल के अंदर। आप सोचिए कितने लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च हो चुका है। तो सोचिए कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कितने आनंद से, और हम 24 घंटे में 24,00,000 रुपए की ऑक्सीजन तकरीबन हम इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए कि अगर किसी को डोनेशन देने को बोला जाए कि भैया देव आपका इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो, अभी आप पूरे 365 दिन आपने ऑक्सीजन लिया, कोई बात नहीं, आप 1 दिन की ऑक्सीजन का पैसा दे दो 24,00,000 रुपए, तो भी टेंशन हो जाती है। ठीक है 24 लाख मत दो, 24,000 दे दो, तब भी नहीं देता व्यक्ति। अच्छा 24,000 मत दो, 24 मिनट दे दो भगवान को, वो भी नहीं देते हम। लेकिन दोस्तों के साथ हम 4-4, 5-5 घंटे घूमते हैं, इधर उधर गप्पे मारते हैं, लेकिन जो है भगवान के लिए हमारे पास 24 मिनट नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कुछ मत दो, कम से कम 24 मिनट मुझे दे दो अपने जीवन के। 24 मिनट भगवान को देने का मतलब सुबह मंगला आरती उठो, 4 बजे से 4:24 तक भगवान की आरती करो, तो ये 24 मिनट हमने भगवान को दिए। तो इस तरह से भगवान का प्रेम हमारे जीवन में जागृत होगा, वरना हम यही भौतिक संसार में ही तृप्त होने के लिए घूमते रहेंगे। प्रभुपाद एक स्टोरी में बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो अमेरिका में जा रहा था रोड पे, और उसने कैप लगा रखी थी, वहां पे हैट लगाते हैं, और हैट लगाकर वो कार चला रहा था, ओपन कार थी, स्पीड में चला रहा था, और उसके अंदर कार कैप के अंदर कुछ लोग पैसे भी फंसाते हैं, $100 उसने छुपा रखे थे, और वो कार चला रहा था गरीब दिखाने के लिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने पैसे टोपी में छुपा रखे थे, और वो चला रहा था कार। तो इतने में स्पीड से कार चलाने से क्या हुआ, टोपी उड़ गई उसकी। अब टोपी उड़ गई तो वो टोपी को लेने के लिए भागा, अब वो भाग रहा है तो पीछे से पुलिस वाले आ गए, क्योंकि इंडिया तो है नहीं कि कहीं पर भी गाड़ी पार्क करिए और उतर के टोपी उठा लिए, तो पीछे से पुलिस आ गई, हॉर्न बजाने लगे लोग, ट्रैफिक जाम हो गया। तो वो भागने आगे भागा 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 बहुत दूर जब निकल गया, फिर वापस यू टर्न लिया, दूसरी साइड से आया, अब जंप भी नहीं कर सकते दूसरी साइड में, हमारे यहाँ की तरह नहीं, बीच में से रोडों को तोड़ा हुआ है, तो दूसरी साइड आकर पार्क किया उसने गाड़ी को, और फिर जंप करके क्रॉस करके आया, टोपी उठाई, तो इतने में जब टोपी उठा रहा था इधर से एक ट्रक आया और ट्रक ने उसको मार दिया। तो देखें तो प्रभुपाद जी इसके अंदर बता रहे हैं कि हमारी जो सीधी रोड है ये भगवत धाम को जा रही है ना, लेकिन हमें लगता है कि कुछ चीज रह गई, उस चीज को पाने के लिए हम यू टर्न मार लेते हैं वापस इस भौतिक संसार में। और वैष्णवाज हमको बोलते हैं, जो पुलिस वाले हैं ना वो बोलते हैं आगे बढ़ो, लेकिन हम फिर यू टर्न मार लेते हैं और फिर जैसे तैसे करके भक्तों को भी चकमा देकर, प्रभु जी घर में कुछ काम था, मैं बीमार था, प्रभु जी आज मैं उठ नहीं पाया, कुछ ना कुछ बहाना लगा के हम वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है, है ना। और उसको पाने में क्या होता है, एक दिन मृत्यु रूपी ट्रक हमारे जीवन में आता है और हमको उड़ा डालता है, और हम वो पुलिस वाले वैष्णवाज जो है उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, है ना। वो जो बोल रहे हैं सीधा चलो, तो हम उसको छोड़कर यू टर्न मारते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि बस चलते रहो, क्या करते रहो, भगवान के नामों का जप करते रहो, शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, श्रवण करते रहो, तो क्या होगा, एक दिन आप भगवत धाम पहुंच जाओगे। वो रोड जारी है सीधी, प्रभुपाद बोल रहे हैं द स्ट्रेट रोड इज गोइंग टूवर्ड्स बैक टू गॉड हेड, लेकिन हम अपनी भोग लगाकर उसको यू टर्न मार लेते हैं, और यही कारण है कि हम अभी यहाँ फंसे हुए हैं। और एक बहुत सुंदर उदाहरण में एक डिवोटी बता रहे थे कि मान लीजिए ये जो है भगवत धाम है, देख रहे हैं सभी, ये भगवत धाम है और ये जो है भौतिक धाम है। अभी क्या है, यहाँ से दो रोड जा रही है, एक रोड ऐसे जा रही है और एक रोड ऐसे जा रही है, ठीक है। अभी देखें, अभी हम मायापुर गए तो देखा विदेशी भक्तों का शरणागति इतनी ज्यादा है, लोग बोलते हैं वहां पर रियलाइजेशन में कि हमसे भी ज्यादा शरणागति उनकी है, हमसे भी ज्यादा शरणागति उनकी है। वो क्यों है, क्योंकि देखें तो ये भौतिक, ये आध्यात्मिक धाम है और ये भौतिक धाम है, ठीक है सर। ये बहुत आध्यात्मिक और ये भौतिक, दो रोड, एक रोड ऐसे जा रही है और एक रोड ऐसे जा रही है। अभी वो क्या है, वो उस रोड पे यहां पर है, मतलब यहां से भौतिक धाम से उन्होंने आध्यात्मिक की तरफ चलना शुरू कर दिया है, तो अभी आध्यात्मिक से तो बहुत दूर है, उनका देश, उनका पहनावा, उनका जीवन शैली, वो अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भगवान की तरफ चलना शुरू कर दिए हैं। और हम कहाँ हैं अभी, हम हैं तो भगवान के करीब, क्योंकि हमारा देश, हमारा पहनावा, रोज भगवान के दर्शन, लेकिन हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में भौतिक की तरफ, और वो चल रहे हैं आध्यात्मिक तरफ। देखा जाए तो वो भगवान से वो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो भगवान की तरफ चल रहे हैं, और हम जो है देखा जाए तो भगवान के नजदीक है, लेकिन हम भौतिक की तरफ चल रहे हैं। तो अभी हमें उनसे देखना चाहिए कि वो भौतिक को प्राप्त करने के बाद यू टर्न मारकर आध्यात्मिक की तरफ चल दिए हैं, तो हमें भी उनका वेट नहीं करना चाहिए कि पहले भौतिक तक पहुंचेंगे फिर यू टर्न मारेंगे और फिर आध्यात्मिक की तरफ चलेंगे। बेटर ये है कि बीच में से शॉर्टकट से यू टर्न मारो और भगवत धाम वापस चले जाओ, है ना। दूसरे को देखकर सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे आगे ट्रैफिक जाम है तो दो प्रकार के लोग हैं, एक स्कूटर लेके जाएंगे और है ना बीच में पूछेंगे कि भाई साहब ये रास्ते से लोग वापिस आ रहे हैं, क्या हो गया, कह रहे वो आगे ना कुछ लोगों ने रोक बंद कर रखा है तो जाम है, शॉर्टकट से निकल जाओ। तो वो बोलेंगे अच्छा, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है शॉर्टकट से निकल जाता हूँ। और जो बेवकूफ व्यक्ति होगा, ज्यादा तर्क वितर्क करने वाली जिसकी बुद्धि होगी, वो क्या करेगा, वो जाएगा उस जगह तक, देखेगा ओहो बंद है, फिर यू टर्न मारेगा, फिर उसी शॉर्टकट से जाएगा। तो हम भौतिक व्यक्ति कैसे हैं, वैष्णवाज बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या कि दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने बोल दिया कि ये दुखों का संसार है, इसे छोड़ो और आध्यात्मिक की तरफ प्रगति करो। लेकिन हम क्या है, पहले देखेंगे, भोग करेंगे, प्रभु जी एक बढ़िया सा लैपटॉप, एक आईपॉड, एक ये, एक वो, एक बड़ी गाड़ी, ये सब हो जाए, उसके बाद भजन तो हम कर ही रहे हैं साथ के साथ, साथ साथ कुछ नहीं होता, वो सब छोड़ना पड़ेगा, उसकी तरफ आसक्ति छोड़नी पड़ेगी और सिर्फ कृष्ण आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी, तभी क्या होगा, हमारे जीवन में प्रगति हो सकती है। वरना हो सकता है कि देखने के लिए हम देखा थे वैष्णव लगे, देखने में तो हम वैष्णव लगेंगे, है ना, माथा नेड़े कौपनी पहने, बोलते हैं ना भक्तिविनोद ठाकुर, माथा नेड़े कौपनी पहने, नाके तिलक गले रुमाला, देखा थे वैष्णव रे लागे, असल शाक्त बाजेर खोला। असलियत में माया के पुजारी होते हैं, असल शाक्त मतलब शक्ति के पुजारी होते हैं, और देखने में क्या होता है, वैष्णव लगते हैं। तो हम सब माया के पुजारी लगे रहे, बने रहेंगे, लेकिन हम जब तक कृष्ण भक्ति के लिए इस भौतिक संसार की चीजों को छोड़ना शुरू नहीं करेंगे, कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आनंद प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भगवत गीता कहती है ध्यायतो विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा कामा क्रोधात उपजायते। तो ये श्लोक जो है भगवत गीता का, इस ध्यान रोज पढ़ना चाहिए कि हम विषयों का ध्यान करते रहते हैं हर पल, जब भी करते हैं तो हम सोचते हैं वो कब मेरे को प्राप्त होगा, ये कब मुझे प्राप्त होगा, वो कब प्राप्त होगा, इसी के कारण ध्यान हमारा विषयों की तरफ रहता है। भले हो सकता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आ गए हैं तो हमको भौतिक चीजों के आवरण खत्म हो गया हो, लेकिन आध्यात्मिक में भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेतना रहती है, कब मैं लीडर बन जाऊंगा, कब मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप जहां पर भी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, आप भगवान के दास हो ना, तो दास की तरफ ध्यान दो। क्यों आप डेजिग्नेशन पे जाते हो कि कब मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, कब मैं गृहस्थ बन जाऊंगा, कब मैं सन्यासी बन जाऊंगा? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, वी आर नॉट प्रीचिंग आश्रम, वी आर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम आश्रमों का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं क्या प्राप्त करूंगा, क्या प्राप्त नहीं करूंगा, बस ये सोचिए कि कैसे भी करके मैं कृष्ण का दास हूं। और उसके लिए कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बस एहसास करना है, महसूस करना है कि मैं भगवान का दास हूं, और भगवान की सेवा शुरू कर दो, है ना। लविंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति का मतलब है लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा। और सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की, कि अपने को दास मान के भगवान के नामों का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको कुछ भी एडिशनल नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू फॉलो। एक बार पूछा गया था कि हु इज गुरु, तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स में से कुछ प्रभुपाद ने पूछा कि बताइए आपकी गुरु कौन है, तो डिसाइपल एक खड़े होकर बोला कि गुरु वो है जो हमें कृष्ण तत्व के बारे में बताता है। प्रभुपाद बोले रॉन्ग, तो बोले दूसरे से पूछा आप बताइए, तो बोले वो जो हमको कृष्ण भक्ति की तरफ प्रगाढ़ फेथ हमारा इंक्रीज कराता है। प्रभुपाद बोले रॉन्ग, बोले थर्ड व्यक्ति बोला मैं बोलूं, बोले हाँ आप भी ट्राई करिए, तो बोले वो जो हमको भौतिक आवरणों से हमारी को क्या है दिव्य ज्ञान को हमारे को प्रकट करता है और भौतिक ज्ञान की क्षति कर देता है, दीक्षा प्रदान करता है, वो गुरु होता है। प्रभुपाद बोले रॉन्ग, तो बोले प्रभुपाद अब आप ही बताइए हु इज गुरु, तो प्रभुपाद बोले वन हु फॉलोज हिज गुरु, जो अपने गुरु को फॉलो करता है वही असली गुरु होता है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यू जस्ट हैव टू फॉलो, डोंट इन्वेंट न्यू थिंग्स। लोग नई नई चीजें प्रकट करने में लगे, प्रभु जी मैंने एक नई पीपीटी बना ली, प्रभु जी मैंने ना एक नया सॉफ्टवेयर बना लिया है आध्यात्मिक, कुछ भी नहीं है, भगवान का भजन करना है, यही भगवत गीता है, इसमें 5000 सालों से चली आ रही है, इसका अध्ययन करना है, यही भागवतम क्लास और इसकी रीडिंग करनी है, इसमें नया इन्वेंट क्या करना है। लोग लगे पड़े प्रभु जी कुछ नया करके दिखाएंगे, इस बार इस साल नया कुछ करेंगे, इस्कॉन में दिखा देंगे हम भी कुछ है, ये सब ये जब जो है ना ये भक्ति प्रदान करने वाले नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति इज वेरी सिंपल फॉर द सिंपल पीपल, बट इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर द क्रूकेड्स। क्रूकेड्स मतलब जो तर्क वितर्क वाली बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है भक्ति, समझ नहीं आएगा कि भक्ति करूं कैसे, लेकिन जो साधारण व्यक्ति हैं उसके लिए भक्ति बहुत सरल है। अभी प्रभुपाद क्यों विलेज कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि विलेजों के अंदर लोगों के अंदर सरल जीवन होता है, सादा जीवन, उच्च विचार। सुबह गाय की सेवा करेंगे, भैंस की सेवा करेंगे, बैल की सेवा करेंगे, रोटी बनाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, खाएंगे, खेतों में सेवा करेंगे, सो जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, है ना। आध्यात्मिक से भौतिक से आध्यात्मिक में आ गए, फिर भी प्रूफ करने की जो क्वालिटी है, अपने को व्यस्त दिखाने की क्वालिटी है, वो नहीं जाती है। हम्बल सर्वेंट में भी लिखते हैं आई एम योर मोस्ट हम्बल सर्वेंट, सबसे बड़ा दास हूं मैं, दासों में दास हूं, हनुमान जी के बाद मेरे ही नंबर आता है, ऐसी फीलिंग। ये सब चीजें जो है आध्यात्मिक में आने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। तो एक बार बता रहे थे कि एक बहुत अच्छी स्टोरी में वैटसन और शार्लक होम्स का आपने नाम सुना होगा, डिटेक्टिव थे, बहुत नॉवेल्स पढ़ते थे लोग उनके, शार्लक होम्स के एक सेक्रेटरी था वॉटसन। शार्लक होम्स और वॉटसन दोनों पिकनिक पे जाते हैं, तो पिकनिक पे जाने के बाद पिकनिक में टेंट्स लगाते हैं ना, अभी जैसे हम मायापुर भी गए थे वहाँ पर टेंट्स में रहते हैं लोग, तो टेंट्स में रहते हैं, तो वो लोग उन दोनों ने भी अपना एक टेंट लगाया और टेंट के अंदर लेट गए, और लेटने के बाद अर्ध रात्रि मिडनाइट में आँख खुली, तो वॉटसन ने बोला कि देखिए, वॉटसन जो था बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था और बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाला था, है ना, शार्लक होम्स सिंपल थे, तो जो तर्क वितर्क करने वाला वॉटसन था वो बोला कि देखिए शार्लक होम्स उठिए देखिए आसमान में कितने तारे हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली मतलब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल का दिन जो होगा वो बहुत सनी होगा, सूर्य का प्रकाश कल बहुत फैलेगा, कल सूरज का उजाला बहुत घनिष्ठ होगा, और अगर हम ये देखें एस्ट्रोलॉजिकली मतलब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एस्ट्रोनॉमिकली तारों की गणना के अनुसार अगर हम देखें तो ये देखिए गैलेक्सीज कितनी एक्सपेंड हो रही हैं, है ना, एक के बाद एक गैलेक्सी, हर मिनट में एक नया यूनिवर्स, एक गैलेक्सी प्रकट हो रही है। और अगर हम देखें फिलोसफिकली तो उसने बोला कि जैसे सारा यूनिवर्स है ये एक भगवान, वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उसके कंट्रोल में है,
है ना। तो इसी प्रकार से वो बोल रहा था। और कैलकुलेटिवली अगर हम देखें तो क्या है कि आज जितने तारे हैं इसके हिसाब से अभी समय रात के 3 बजे होंगे। तो उसने क्या क्या बताया, एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमिकली, कैलकुलेटिवली, फिलोसफिकली, अपने उदाहरण दे रहा था। तो उन्होंने बोला आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो शाला कॉम्स बोले लॉजिकली हमारा टेंट किसी ने चोरी कर लिया है तभी हमें तारे नजर आ रहे हैं। तो लॉजिकली जो है लॉजिकली ये है कि हमें भक्ति करनी है लेकिन हम ये अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, कैलकुलेटिवली, इतने सारा दिमाग लगा के भक्ति नहीं करनी है। लॉजिकली प्रभुपाद ने लॉजिक्स दिए है ना, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जस्ट सरेंडर टू गुरु, जस्ट सरेंडर टू कृष्णा एंड फॉलो जो रिटर्न है अपने भगवत गीता के अंदर, है ना। इस तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता में एक श्लोक है, भगवत गीता के महात्म में क्या बोलते हैं, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, भगवान के द्वारा दिया गया एक ही शास्त्र है क्या, देव की पुत्र गीतम, देव की पुत्र की गीता कौन सी है, भगवत गीता। एको देवो देव की पुत्र एवं, एक ही भगवान है, कौन है देव की पुत्र, कौन है कृष्णा। एको देवम देव की पुत्र एवं एको मंत्रस्य नमानि यानि, कौन सा मंत्र है, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, और कामप्य एवं तस्य देवस्य सेवम, और हमारे पास एक ही कर्म है ऐसे देवता ऐसे कृष्ण की सेवा करना। किस प्रकार से, तो 3 प्रकार बताए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवत गीता का अध्ययन करना और कृष्ण के भक्तों की और कृष्ण की सेवा करना। तो ये तो इतना सिंपल बात है, इसमें अपना कॉम्प्लेक्स दिमाग लगाने की, कैलकुलेटिवली, एस्ट्रोनॉमिकली सोचने की जरूरत ही नहीं है। लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, प्रभु जी अगर हम भक्ति में आ गए तो क्या शनि का हम पर असर नहीं होगा। प्रभु जी ये कैसे क्वेश्चन है, जब बोल दिया कि कुछ नहीं है, भगवान ही है, भगवान की आप बात कर रहे हो फिर भी लोग पूछते हैं। प्रभु जी डर लगता है कई बार ना, अभी तो हम शुद्ध भक्तों को भगवान देख रेख करते हैं, हम तो शुद्ध नहीं हुए हैं फिर भी, तो आप बनना ही नहीं चाहते हो तो कैसे बनोगे। प्रभुपाद जी हमेशा इन चीज़ों को देख के ना बहुत नाराज होते थे, आप अगर उनके कन्वर्सेशन लेक्चर सुनेंगे तो प्रभुपाद नाराज हो जाते हैं, तुम देखना ही नहीं चाहते हो भगवान कैसा होता है तो तुम फालतू के क्वेश्चन क्यों पूछते हो। अब भगवान कैसा होता है, बोले ऐसा होता है भगवान जल का स्वाद, बोले भगवान मैं हूँ, हाँ रसो पियस्य हम कौन तू है, उठाया और पी लिया प्रभुपाद ने पानी, बोले देखा मैंने भगवान के दर्शन किए तुमने किए, बोले नहीं, बोले तुम करना ही नहीं चाहते हो इसलिए तो नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं इसीलिए नहीं कर पाते हैं। लोग पूछते ना प्रभु जी हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, करना ही नहीं चाहते हो तो कैसे करोगे, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह लिखते हैं कि भगवान श्री राधा गोविंद की भक्ति से हमको सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है इस संसार में, पता है कौन, हम और कोई नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि आपको भगवान की शरणागति से सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वो आप खुद हैं, और कोई संसार में ऐसी कोई चीज नहीं, ये इफ एंड बट कि इसके कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। जहां पर भी हो ये न के न प्रकार ये न मना कृष्ण निवेशयात, ग्रह थाके वने थाके सदा हरि बोले डाके। आप जंगल में भी हैं तब भी हरे कृष्ण जपना है, आप घर में हैं तब भी हरे कृष्ण जपना है, मंदिर में तब भी हरे कृष्ण करना है, ऑफिस में तब भी हरे कृष्ण करना है। ये कहां से कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि प्रभु जी जब तक हमें मंदिर आने का टाइम नहीं मिलता इसलिए भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो जहां पर भी है आप ये न के न प्रकार जैसे तैसे करके मन को सदा कृष्ण के स्मरण में लगाइए। किसी की गर्लफ्रेंड होती है तो उसके लिए उसको ऑप्शन थोड़ी सोचना पड़ता है कि मैं जब मिलूंगा तभी उसके बारे में सोचूंगा, वो घर में रहता है तब भी उसके बारे में सोचता है, और गार्डन में होता है तब भी, ऑफिस में होता है तब भी, कॉलेज में होता है तब भी। कई लोग तो एक्सपीरियंस्ड होंगे आप में से जानते हैं किस प्रकार से ऐसा होता है। तो ऐसे हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, है ना। तो बता रहे हैं प्रभुपाद कि कस्मिन तु भगवो विगते, कस्मिन तु भगवो विज्ञते, सर्वम इदम विज्ञातम भवति, मतलब दिस प्रोसेस इज सो ग्रेट कि इसके अलावा जानने की और कुछ जरूरत ही नहीं है। ये शास्त्र पढ़ लिया, चलो अब ऐसा करते हैं थोड़ा रामायण भी पढ़ लेते हैं, तुलसीदास ने रामायण में क्या लिखा है, है ना, रामचरितमानस भी पढ़ लेते हैं, है ना, भागवतम तो रामायण के बारे में बताया नहीं। एक डिवोटी पूछ भी रहे थे रामचंद्र जी के बारे में इतना कम क्यों लिखा है आप लोगों ने, जैसे मैंने ही लिखा है रामचंद्र जी के बारे में इतना कम क्यों लिखा है। अरे जितनी जरूरत है उतना लिखा है ना, जो जो बताया वो फॉलो तो करो पहले, चरित्र पढ़ने से क्या होगा, अपना चरित्र बदलने का प्रयास करो ना। रामचंद्र जी ऐसे थे, रावण ऐसा था, ये नहीं देख रहे कि तुम राम बनने का प्रयास कर रहे हो, रावण बनने का प्रयास कर रहे हो। अपने चरित्र को बदलिए, दूसरे का चरित्र पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन मार्क तर्क वितर्क बुद्धि से नहीं करना चाहिए। है ना, इसलिए बोल रहे कास्मिन तू भगवो विज्ञते। अगर भगवान को विज्ञान को हम समझ गए तो क्या होगा, सर्वम इदम विज्ञातम भवति, हम सर्व विज्ञाता बन जाएंगे, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है अगर खाली गीता भगवत गीता को हमने समझ लिया। जैसे ग्रेजुएशन बुक जो होती है वो है भगवत गीता, लोग उस भगवत गीता को भी नहीं पढ़ते हैं और प्रचार कार्य में भी निकल जाते हैं और क्वेश्चन भी पूछने लगते हैं। एक बार अपने जीवन में एक चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक लगातार भगवद गीता को पढ़िए, फिर देखिए आपके थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे ना। प्रभुपाद जी के हर एक शब्द के बारे में प्रभुपाद ने बहुत सोच सोच के लिखा है। प्रभुपाद लिखते होते थे तो एक वर्ड लिखते थे और फिर सोचने लगते थे, तो डिवोटी पूछते थे प्रभुपाद आप एक एक शब्द का इतना सोच सोच के क्यों लिखते हो। प्रभुपाद बोले कि कलयुग में लोगों के पास इतना कम समय रहेगा आने वाले समय में कि लोग सिर्फ बुक खोलेंगे एक वर्ड पढ़ेंगे, अगर वो वर्ड पावरफुल नहीं हुआ तो उनका जीवन हो सकता है बदले ना बदले। तो हर वर्ड इतना पावरफुल होना चाहिए कि एक भी शब्द पढ़ लिया तो उसका जीवन बदल जाए। पढ़ लिया खाली शरणागति, शरणागति मतलब सरेंडर, सरेंडर मतलब कृष्ण सेवा, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, और इतना लंबा तात्पर्य। भक्ति, भक्ति का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं सोच के, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक भक्तों की सेवा करना, ये ऐसे करके प्रभुपाद ने सोच सोच के लिखा। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस जो संसार है ये एक स्टूल के समान है, स्टूल मतलब मेज वाला नहीं, जो मल होता है मल के समान है। मल जब थोड़ी देर पड़ा रहता है तो थोड़ी देर में ना ऊपर का जो सतह होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, और नीचे की सतह गीली रहती है। तो कोई लोग बोले, दो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो डिस्कशन करते हैं कौन सी वाली सतह अच्छी है, ड्राई वाली या वेट वाली, गीली वाली या सूखी वाली। वो बोले मेरे को तो सूखी वाली ठीक लगती है, वो बोले मुझे वेट वाली। प्रभुपाद कह रहे दोनों मूर्ख है, क्योंकि जो मल है वो तो मल ही है। तो ये भौतिक संसार ये मल के समान है, इसमें कुछ चीजें सूखी हैं कुछ चीजें गीली हैं। प्रभु जी अगर ऐसा होता, अगर हम मंदिर में ना सेवा करके बाहर सेवा करें, बाहर से पैसे कमाएं और फिर डोनेशन दें मंदिर में और भजन करें, बढ़िया, वो ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है? या फिर हम फुल टाइम मंदिर में आके, तो ये होता है मंदिर में ऐसे सुनना पड़ता है, ये सुनना पड़ता है, या फिर जो बाहर होते हैं, प्रभु जी ये अच्छा नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और फुल टाइम मंदिर में आ जाऊं, फिर मेरी भक्ति ज्यादा नहीं हो सकती है? तो भक्ति ज्यादा होने के लिए फुल टाइम आना या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि कहीं पर भी रहकर आप भक्ति कर सकते हैं। ये जो संसार है मल के समान है, इसमें ऊपर की सतह सूखी और नीचे की सतह गीली है। तो हो सकता है किसी को सूखा पसंद हो किसी को गीला, लेकिन वो संसार मल के समान है ना। संसार मल नाशनम, इस संसार के मल का नाश कौन कर सकता है? भगवद गीता, भगवद गीता का ज्ञान, और इस संसार को मल के समान समझ के छोड़ देना चाहिए। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने अंदर से अहंकार भाव को खत्म कर देंगे। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, हम संसार में सोचते हैं हर चीज को करने वाला कौन है, मैं हूँ। प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्मानी सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, यही सोचकर हम हर एक चीज को करते हैं। आई एम द बॉन्ड, आई एम द बॉस, आई एम द बेस्ट, यही सोचकर हम सारे कार्यों को करते हैं। इवन भक्ति के कार्यों को भी यही सोचकर हम पूर्ण करते हैं कि हम सबसे सर्वोपरि हैं, बेस्ट हैं। प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि हमको अपने आचरण से, कि हमें विनम्रता को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। सिंसेरिटी और ह्यूमिलिटी, ये दो चीजें हैं जो भक्ति को आगे लेके जाएंगे। ह्यूमिलिटी जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द से आया है। ह्यूमिलिटी में ह्यूमस जो शब्द है, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी। और ये मिट्टी कौन सी मिट्टी है जो जिसके अंदर खेती सबसे बढ़िया होती है? ह्यूमिलिटी के अंदर ह्यूमस शब्द मतलब सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, वो मिट्टी जिसमें भक्ति लता बीज प्रगति करता है। जिसमें ह्यूमिलिटी होगी जिस व्यक्ति के अंदर, उसको भक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिसमें ह्यूमिलिटी नहीं है और सब कुछ है, वो व्यक्ति क्या कुछ भी कर ले, लेकिन वो भक्त बन सकता है ऊपरी रूप से, लेकिन अंदरूनी रूप से वो हमेशा भौतिक रहेगा। देखा रहा वैष्णव लागे असल शाक्त भाजेर को, वो हमेशा देखने में तो लगेगा वैष्णव है लेकिन अंदर से शक्ति माया का भजन करता होगा, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो आए, तो हमें ह्यूमिलिटी को डेवलप करना चाहिए और सिंसियरिटी को डेवलप करना चाहिए। और बताते हैं सिंसियरिटी से ह्यूमिलिटी अपने आप ही डेवलप हो जाती है। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान का भजन करता है, ध्यान पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करता है, ध्यान पूर्वक श्रवण करता है और गुरु की सेवा करता है, उस व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। ये बाई प्रोडक्ट्स हैं भगवान का ध्यान पूर्वक जप करने के, बाई प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमिलिटी। और ह्यूमिलिटी किस प्रकार की होती है तो छोटे से दो एग्जाम्पल से सुनाऊंगा, उसके बाद समाप्त करेंगे, समय हो गया है। एक बार प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे बैठे थे जर्मनी में, तो प्रभुपाद जी वहाँ पर बैठे थे और कुछ टेंपल के प्रेसिडेंट्स, वहाँ टेंपल प्रेसिडेंट थे और टेंपल के भक्त थे, ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह प्रचार के लिए जा रहे थे। तो सारे के सारे भक्तों की आदत होती है, जैसे ही 15-20 भक्त इकट्ठे होते हैं जप माला में उंगली डालते हैं श्री हरे तो भक्तों को तो आनंद आता है, लेकिन भौतिक लोगों को लगता है जैसे मच्छर बिनबिना रहे हैं ऐसे। तो भौतिक लोगों ने ना शिकायत कर दी जाकर एयरपोर्ट में, बोले कि ये देखिए आपके है ना कुछ लोग भक्त आए हुए हैं और ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं एयरपोर्ट में। तो टेम्पल प्रेसिडेंट को आकर बोला कि हु इज द लीडर, तो किसी ने बोला ये है, तो लीडर के पास गए, बोले कि ऐसे है देखिए आप इन लोगों को उठा के उस रूम में शिफ्ट कर दीजिए, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, तो आए टेम्पल प्रेसिडेंट खड़े होकर बोला हरि बोल, आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग सारे भक्त जो है वो यहाँ से ट्रांसफर करके उस रूम में चले जाए। तो प्रभुपाद भी बैठे थे जब कर रहे थे, तो प्रभुपाद भी चल लिए। तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोला नहीं नहीं प्रभुपाद मैंने आपके लिए नहीं कहा, मैंने तो सारे भक्तों के लिए कहा। प्रभुपाद बोले क्या मैं भक्त नहीं हूँ? तो मतलब देखिए कितनी ह्यूमिलिटी है कि टेम्पल प्रेसिडेंट ऑर्डर दे रहा है तो प्रभुपाद भी उस ऑर्डर को मान रहे हैं, बोल रहे हैं ही इज दी अथॉरिटी और उसको मानकर उसके साथ साथ चल रहे हैं। ये विनम्रता है, ये थोड़ी मैंने तो मूवमेंट बनाया मुझे ऑर्डर दे रहे तू। यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल की सेवा करने लगे कोई व्यक्ति या उसको हेड बना दिया जाए तो व्यक्ति सोचने लग जाता है कि अरे मैंने तो ये टेम्पल में तुझे लेके आया, तू मुझको ऑर्डर दे रहा है। मतलब फिर हमने सिंसियरिटी को बढ़ाया नहीं है। सीनियरिटी मतलब सैक्रिफाइस है ना, सीनियरिटी मतलब सैक्रिफाइस है ना, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सैक्रिफाइस ह्यूमिलिटी, हर एक चीज के लिए हम सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। जूनियरिटी मतलब कॉम्प्रोमाइज, जूनियर मतलब कॉम्प्रोमाइज, सीनियरिटी मतलब सैक्रिफाइस और डिवोटी मतलब सेटिस्फाई। तो व्यक्ति को सेटिस्फाई संतुष्ट होना चाहिए भक्त को। और एक एग्जाम्पल में प्रभुपाद की बहुत सुंदर उसमें बता रहे हैं कि एक बार प्रभुपाद एक कथा कर रहे थे तो प्रभुपाद ने कथा में बोला चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभागश, जो ये संसार की सृष्टि है इसको चार वर्णों में बांटा गया है। पहले फर्स्ट क्लास ब्राह्मणाद होते हैं, सेकंड क्लास क्षत्रियाज होते हैं, थर्ड क्लास वैश्याज होते हैं, फोर्थ क्लास जो होते हैं शूद्राज होते हैं। तो है ना एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, वो खड़े होकर बोला What do you think? आप अपने आप को क्या सोचते हैं? आप बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास हैं, हम सुन रहे हैं, हम फोर्थ क्लास हैं। तो प्रभुपाद ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभुपाद का आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद बोले कि नहीं, आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल द फोर क्लासेस एंड आई एम द फिफ्थ क्लास, मैं चारों क्लास जो चारों श्रेणी है उनका सेवक हूँ, दास हूँ और मैं पांचवी श्रेणी में आता हूँ, अब आप खुश हैं? तो व्यक्ति चुप होकर बैठ गया। ये होती है विनम्रता। वरना अगर अभी कोई हमें कोई ऐसे हम लेक्चर देने जाए और हमको कोई बोल दे आप तुम भाषण दे रहे हो, आपको कुछ मालूम है, ज्ञान है आपको, आप चुप हो जाए, बैठ जाइए, चिल्लाने लग जाए। वो टू एंड फ्रो, क्योंकि यहाँ से अभी चेंज नहीं हुए ना, हो सकता है नॉलेज आ गई हो, कपड़े बदल गए हो, लेकिन यहाँ से जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ही कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है ना। देखिए परीक्षित महाराज को कितने ध्यान पूर्वक होकर वो कथा सुन रहे हैं, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना ही टेंशन हो रही है कि 7 दिन बाद मुझे ना तक्षक नाग जो है दसने वाला है। तक्षक जैसा नाग जो कि एक बार सिर्फ ऐसे जहर फेंके तो पूरा का पूरा वृक्ष जल जाता था, पत्ते गायब हो जाते थे उसके, पूरा काला पड़ जाता था, ऐसा तक्षक नाग मुझे दसने वाला है। तो सोच नहीं रहे कि अब कितने दिन रह गए, घड़ी देखे बार बार या टाइम देखे कैलेंडर में, काटते रहे 6 दिन 5 दिन 4 दिन, ऐसे नहीं कर रहे। और हम भी हम एक कथा करने को बैठ जाए तो हम अभी समय देखेंगे सभी लोग क्या कि 9 बज गए प्रोजी प्रसाद के टाइम हो रहे, आप 5 मिनट ज्यादा बोल दिए प्रोजी, अगली बार ध्यान रखना। ये कथा के प्रति हमारी शरणागति है। लोग कथा करते हैं जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज कथा करते थे भुवनेश्वर टेम्पल में, तो उनके डिवोटीज बताते हैं कि महाराज 3-3 घंटे की कथा करते थे, 3 घंटे 3.5 घंटे। तो भक्त जो है उसमें से जो शुरू होते थे तो पूरा हॉल भरा होता था, जब खत्म होती थी क्लास तो आधा हॉल पीछे से खाली होता था, प्रसादम हॉल में प्रसाद पाके निकल गए होते थे। गुरु बोल रहे बोलने तो कोई बात नहीं, अपना काम चलना चाहिए। गुरु तो लोग पूछते थे, फिर अगली बार जाकर कुछ सीनियर डिवोटीज को बोला कि बोले हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, आप बोलिए ना महाराज को कि थोड़ा कम समय में बोला करें। तो महाराज को जाकर बोले, महाराज बड़ा गुस्सा करते थे प्रभुपाद के जैसे, तो उनको जाकर बोले महाराज आप 3 घंटे की कथा को जरा 1-1.5 घंटे में करा करिए। महाराज बोले आई एम नॉट स्पीकिंग, गौर निताई मेक मी टू स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, गौर निताई मेरे हृदय में बैठ के बोलते हैं, वो बोल रहे मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ, तो बोलने दो। तो महाराज लगातार 3-2.5 घंटे ऐसे लंबी लंबी कथा होती। ये शरणागति है हमारी प्रसाद के प्रति, घर के प्रति हम सोचते रहेंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं मोबाइल भी चेक करते हैं बीच बीच में कितनी मिस्ड कॉल आ गई, कितने मैसेज आ गए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, खाली ड्यूटी की तरह इसको करेंगे तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन तभी आएगा जब सिंसियरिटी से हम कोई काम को करेंगे। किसी का ऑपरेशन हो रहा हमारे घर में, तो हम उस टाइम क्या मोबाइल में मिस्ड कॉल चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं, सारा टेंशन होता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी यहाँ पर हमारा ऑपरेशन हो रहा है, बाईपास हार्ट सर्जरी, क्लोज हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, सारी सर्जरीज हो रही है ना, दिमाग में आध्यात्मिक ज्ञान जा रहा है, इस समय सब कुछ भूल जाना चाहिए, ऑपरेशन कैसा होगा सक्सेसफुल इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, तब ही हमारे जीवन में क्या होगा परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि कथा श्रवण जब हम करते हैं तो एक भागवत कथा में एक महात्म में एक बड़ी अच्छी कथा बताते हैं, क्या नाम है उनका, गौकर्ण और धुंधकारी, आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, गौकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है भागवतम के महात्म में, कि गौकर्ण थे, वो लंबी कथा है किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। तात्पर्य यह था कि उस कथा में जो कथावाचक थे वो बोलते हैं कि धुंधकारी के लिए जब गौकर्ण जी कथा करते हैं, धुंधकारी प्रेत आत्मा बन जाता है अपने दुष्कर्मों के कारण, तो बोलते हैं कि जो कथा सुनेंगे उन सबके लिए कथा सुनने से विमान आता है, भागवत धाम से विमान आता है। भागवत कथा को अगर लगातार आप सुने 7 दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लगातार 7 दिन सुने, जैसे हम सुनते रहते हैं लगातार, तो भागवत कथा सुनने से विमान वैकुंठ धाम से डायरेक्ट विमान आता है भक्तों को लेने के लिए। तो भक्तों ने प्रश्न पूछा कि हम तो 30-40 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं, हमारे लिए तो कोई विमान नहीं आया। तो उन्होंने कहा विमान का अर्थ क्या है जानते हैं, तो कुछ प्रवचन जो दे रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, विमान का अर्थ है विगत मान, मतलब अपने जीवन में मान सम्मान की जो इच्छा है भावना है उसका हनन हो जाना, वो चला जाए जीवन में से, कि मुझे किसी ने इज्जत दी या नहीं दी, किसी ने मुझे रिस्पेक्ट दी या नहीं दी। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं अमानी नान माने देना कीर्तनी हम सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन करते रहे इस चीज को भूलकर कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, तब हमारे जीवन में विमान आ गया समझिए, अगर ये नहीं आया तो फिर विमान नहीं आया। बोलताते हैं हनुमान जी का अर्थ है जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया है, कभी ये नहीं बोला रामचंद्र जी आप तो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में फोटो खिंचाते हैं, एक बार मेरे साथ भी खिंचाइए, हम लोग भी फोटो खिंचाते हैं ना स्टैंडिंग पोजीशन, लेकिन वो अपनी पोजीशन में बरकरार है दास भावना में, अपने मान का हनन करने के कारण उनको हनुमान कहा जाता है। ऐसे ही अपने जीवन में मान सम्मान का हनन कर दीजिए कि हम तो दास हैं, ये नहीं आई एम सीनियर डिवोटी, आई एम जूनियर डिवोटी, आई एम दिस डिवोटी, आई एम दैट डिवोटी, आई एम जस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अभी बहुत सुंदर, अभी वहां पर हम जब गए थे मायापुर में तो एक भक्त थे, वो ब्राजीलियन डिवोटी थे, वो आकर क्या करते थे कैंप्स में ना सबकी मालिश करते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं चार्ज करते रोज, और वो वहां पर रहते हैं ब्राजील से 15 साल से मायापुर में रहते हैं, तो उनका नाम क्या था प्रेम रूप दास। तो वो प्रभु जी क्या करते थे ऑयल लेके आते थे स्पेशली और सबकी सेवा करते थे, सबके पांव दबाते थे। तो एक दिन मेरी भी कमर में बहुत दर्द था तो उन्होंने अनाउंसमेंट में बोला कोई भक्त चाहते हैं, तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया प्रभु जी मेरा भी चाहता है। तो वो आए, वो बड़े टेक्निकली रेकी जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं, बहुत सुंदर भक्त हैं। तो उन्होंने पूरे आधे घंटे तक मसाज करी ये पैर, मुझे बहुत वो लग रहा था कि इतने सीनियर डिवोटी होकर पैर छू रहे बार बार ऐसे दबा रहे हैं। फिर मैंने उनको दंडवत किया, मैंने प्रभु जी आपका नाम क्या है, बोले व्हाट इज योर नेम, मैं कहा प्रशांत मुकुंद दास, बोले आई एम प्रशांत मुकुंद दास दास। तो ये देखिए इतनी ह्यूमिलिटी है। फिर मैंने कहा नहीं वो आपका ओरिजिनल नेम, बोले दिस इज द ओरिजिनल आइडेंटिटी, मैंने कहा नहीं नहीं मतलब आपका क्या नाम है, तो बोले अभी तो बताया मैं आपका दास हूँ। और देखिए इतनी सेवा का भावना, 5 घंटे डेली वो सबकी मालिश कर रहे हैं, है ना, 7-8 दिन लगातार परिक्रमा में, और उसके बाद बोल रहे हैं आई एम द सर्वेंट, ये नहीं मेरा कार्ड रख लो नेक्स्ट टाइम मुझे फोन कर लेना, जाकर बताना फरीदाबाद में कि मैं ना मायापुर में ऐसे एक डिवोटी हैं इतनी सेवा करते हैं, कुछ नहीं। तो ये है सर्वेंट बनने का एटीट्यूड है, तभी हम माया के चंगुल से बच पाएंगे। हरे श्रीमद् भगवत ग्रंथ राज की, शिला प्रभुपाद की, आई गॉट प्रेम आनंदे। जी प्रभु जी।